इसीलिए ये जो चिंता बनी रहती है, कल क्या होगा, भविष्य की चिंता और पास्ट का पश्चाताप। हमने 40 साल 50 साल यूं ही गवा दिया एक पश्चाताप मन में, और भविष्य की चिंता, नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, पति छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, पत्नी छोड़ देगी तो क्या होगा, बच्चे छोड़ देंगे तो क्या होगा। मुझे भविष्य की जो है सो चिंता है, मर जाएंगे तो क्या होगा, समझे ना। ये सारे चिंताएं उस वक्त समाप्त हो जाती है मनुष्य की जब हमें सत्य का अनुभव होता है। सत्य का अनुभव कर लेने के बाद व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई मौत नहीं है, जहाँ कोई पास्ट नहीं है, जहाँ कोई फ्यूचर नहीं, जहाँ कोई प्रेजेंट नहीं, ठीक है। जैसे जब कोई हवाई जहाज ऊपर को जाती है ना, तो पेट्रोल कम हो जाए या कोई बात हो तो उसको गिरने का भय होता है, लेकिन 200 किलोमीटर क्रॉस कर जाए तो पेट्रोल खत्म हो जाए, चाहे जो मर्जी हो, वो जहाज नीचे नहीं गिरेगा। नहीं, जब तक जहाँ तक ये हवा है जो भी है, उसके बाद तो वो ऐसे ही अटका रहेगा जैसे। इसी तरह से जब जहाँ तक शरीर है, जहाँ तक इंद्रियां हैं, जहाँ तक मन है, जहाँ तक बुद्धि है, जब तक हम इन जगहों पर हैं तब तक दुख है, क्लेश है, गिरने का डर है, परिवर्तन का डर है। जब हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इसके तल से उठ करके चेतना के तल में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर मौत नहीं है, परिवर्तन नहीं है। इसलिए कहा गया है अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो। वेद में मंत्र आया है अमृतस्य पुत्र, तुम्हारा जो स्वरूप है वो अमृत है। और ज्ञान ही अमृत है, जो ब्रह्म ज्ञान है वो क्या है, अमृत है। तो ज्ञान रूपी अमृत को पा करके व्यक्ति सदा के लिए अमर हो जाता है। फिर उसके शरीर को बंद बंद काटा जाए, पानी में उबाला जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अंदर वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसको कोई कुछ न दुखी कर सकता न सुखी कर सकता है। वो अवस्था आपकी भी आएगी, लेकिन गली जोगना हो गई, ये गला नाल नहीं होना। आज कुछ चीजें हम बता रहे हैं जो आपने रोज करना है, समझे ना। ध्यान का मतलब है अंदर की खुदाई, ठीक है। ध्यान का मतलब क्या है? अंदर की खुदाई। जैसे हमको जल चाहिए, पानी चाहिए ना, तो हम जमीन को खोदते हैं तो पहले पत्थर, कंकड़, मिट्टी, रेता, यही चीजें निकलती है। पानी नहीं निकलता, और चाहिए पानी हमको, और हम निराश होते हैं कि रोज मेहनत भी करते हैं और मिलता जुलता कुछ नहीं। इसलिए ध्यान के साथ धैर्य, ध्यान चाहिए के साथ साथ पेशेंस नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद आदमी उदास हो जाएगा, फेड अप हो जाएगा और फिर छोड़ देगा उसको। यहां तो आप करते ने करवा लिया जाता है, समझे कि नहीं। आते ने आपको कोई शक्ति है जो ले आता है, समझे कि नहीं। लेकिन घर पर जबकि कहीं आना जाना भी नहीं और वहाँ आसानी से कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं। उसका कारण यही है उसका मुख्य कारण यह है कि हमें कि जी 10 दिन किया, 5 दिन किया, कुछ मिला तो है नहीं, है? ऐसे 4 घंटा 6 घंटा काम करते हैं, 10-20-50 डॉलर आ जाता है हाथ में, आगे करने के लिए डबल उत्साह पैदा हो जाता है, है ना। वो हमारे उत्साह को बढ़ाता है। अब परमजीत को 10 दिन करा के कुछ मिले ना जो है तो कहेगा मुझे की जरूरत है, वो तो डॉलर मारता है, शक्ति आ जाती है। हरेक को, हरेक के अंदर मेहनत करने के बाद, कुछ भी करने के बाद उसका रिजल्ट नजर आवे ना तो उत्साह बना रहता है, नहीं। लेकिन 10 दिन ध्यान करेंगे तो बाहर तो कुछ मिला नहीं, यहाँ तक कि जो पकड़ है वो भी थोड़ी ढीली हो जाती है, बाहर की जो पकड़ है ना वो भी थोड़ी ढीली सी हो जाती है, तो आगे कुछ मिला नहीं तो आदमी उदास होता है, उसका उत्साह जो है ना कम हो जाता है। ऐसे समय में ईश्वर की प्रार्थना, वाहेगुरु के आगे अरदास। और देखो, दुनिया में जो मर्जी कहे, लेकिन जिन महापुरुषों ने हमें ये विद्या दिया ना, हम तो उनको गुरु ही कहते हैं। सिख जगत में जो मर्जी कहता रहे कि जी गुरु तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को मानना और किसी को नहीं, लेकिन वो सारी दुनिया कुछ कहता रहे, लेकिन हमारा जो अपना पर्सनल जो भी हो है ना, वो ये है कि अलाइव गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। ये हमारा अपना पर्सनल व्यू मैं बता रहा हूँ। सारी दुनिया जो मर्जी कर, हमें ना किसी को मनवाने की जरूरत है, हुँ? समझे नहीं, जो भी हो एक मिनट आप सुनो, ओनली सुनो, समझे ना। हम आप ये हमारा ओन विचार है, हमें ये नहीं कहता हूं कि ये हमारे विचार को सारे माने, हम फोर्स नहीं करते किसी, लेकिन क्यों, क्योंकि जिस तरीके से हमने अनुभव किया है तो हम अपने ढंग से बताता हूं। जीवंत गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, एक। दूसरा, अहंकार की निवृत्ति जीवंत गुरु के बगैर नहीं हो सकता। तुम्हारे अहंकार को जीवंत गुरु ही छीन सकता है, ये नहीं करना, ये करना है, तुमको ऑलवेज झिड़कते रहना है, समझे ना। और तुमको भी भय रहेगा, उसका कारण क्या है, कहां तुम बैठे हो और धीरे धीरे कहां ले जाना है, वो आपके अंदर हर एक स्थिति को वो देख रहा है और उसके अनुसार आपको साधना बताता रहेगा। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आए हैं जो दस दस घंटे रोज पाठ करते हैं, दस दस घंटे, दस जपजी साहेब, पांच सुखमनी साहेब, पांचों बनिया का, और वो कहते हैं स्वामी जी पहले से मैं ज़्यादा परेशान जरूर हूँ लेकिन पहले से मेरे अंदर शांति नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो दिशा में हमें जाना चाहिए, मान लेते हैं कि हमको मंदिर में जाना हो और ये जो चौराहा है ना उधर की तरफ बहुत तेज से दौड़ें ताकि जल्दी मंदिर आ जाएं, बहुत तेजी से दौड़ें तो पहुंच जाएंगे, है? दिशा हमारी उधर हो चाहे उधर हो चाहे इधर हो और दौड़े भी बहुत तेज से, दिशा ही गलत होने के कारण जो है ना जितना ज्यादा तेज दौड़ेगा वो और दूर होगा। दिशा सही हो तो दूसरे कदम में तो वो बैठा है, हम कहीं तब जाएं जब वो कहीं हो, वो जहां आप हो वहीं है वो, सिर्फ दिशा, समझे ना। वो बुल्ले साहब कहता है ना, बुलिया रब दा की पाना, इत्थे पुटना तो इत्थे लाना, इतना ही बोलता है ना, और ये सच्चाई है। जोर ना जुगती छोटे संसार, कल 52 अखरी जो है ना, कल वहाँ कथा चल रहा था, तन मन धन 30 सौंपिए, 52 अखरी का, तन मन धन 30 सौंपिए प्रभु मिलावे मोहे। वो मैं पंक्ति सुन के मैं बड़ा हैरान हूँ, उन्होंने ये नहीं बताया किसको सौंपना है, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया गुरु महाराज ने, गुरु अर्जन देव जी ने, तन मन धन 30 सौंपिए प्रभु मिलावे मोहे, सीधी सी बात है। जो हमको प्रभु वाहिगुरु के साथ मिला दे, उसको तन सौंपिए, मन सौंपिए और धन सौंपिए, वो शर्त रखे हैं। यदि कोई आपको ऐसा महापुरुष मिले, आपने क्या सपना है? तैयारी कुछ है? राजा जनक जो है ना, राजा जनक कहता है कि कोई मुझको ज्ञान करा दे तो जो कहेगा वो हम करेंगे। तन मन धन तो साधारण सी, वो कुछ भी कहेगा। और घोड़े के रकाब के ऊपर पांव रखना है एक, और दूसरा रकाब के ऊपर पांव रखना है उस उतने दौरान में करा दे। अष्टावक्र जी कहते हैं मैं करा दूंगा, समझे कि नहीं? लेकिन तीन चीजें हैं, तन मन धन, उसमें एक चीज तो दे दे मुझको। उदाहरण ने पहले दे दे सर, फोटो क्या है ना, एक जगह आते ना कहते ना, शिष्य जब एक कदम चलता है ना गुरु के पास तो गुरु हजार कदम चलते हैं। तो शिष्य कहता है गुरुजी ऐसा है मैं एक कदम नहीं चलता, तुसी हजार में से एक लेस कर दो, तुसी 999 आप ही चल के आ जाओ। नहीं, ये हाल है। लेकिन शर्त पहले यही है कि एक कदम आपको चलना पड़ रहा, तब हजार वो चलूंगा। अष्टावक्र जी कहते हैं तीन चीजें हैं, इसमें एक दे दो, इतने समय में ज्ञान करा दूंगा मैं। सोचा थोड़ा पत्नी से ही पूछ लें, ऐसा नहीं जो आप कुछ कर दो और आपकी मिसी आपने तो गलत करके आ गए, लड़ाई हो जाए, तो इसलिए आप जो है पूछ लेना इनसे। नहीं, वो गया जी पूछने के लिए राजा जनक कि भाई तीन चीजों में एक चीज देना है हमने गुरु को, देख लो। वो सोचती है कि यदि इन्होंने तन दे दिया तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, कुछ बचा नहीं मेरे को, तन नहीं देना। और धन दे दिया क्योंकि सब टोटल देना है, उसमें एक चीज रखनी नहीं है, फिर देनी है। सारा राज्य दे दिया तो संसार में पैसे के बगैर तो कोई जिंदगी नहीं, कंगाली जो है। धन नहीं देना, ना तो धन देना ना तन देना, एक मन छोटा सा जाओ ये ही दे दो बस। नहीं, अपने ढंग से हर एक सोचते हैं ना, जब मन दे। राजा जनक कहते हैं अष्टावक्र जी को कि हमने आपको मन दे दिया। कहते ठीक, वो मौन हो गया, अष्टावक्र जी मौन हो गए। एक पांव पर उसने रखना था, फिर दूसरे पर रखना, एक पांव एक रकाब के ऊपर रखा और दूसरा पांव दूसरे पर रखने लगा। अष्टावक्र ने एक थपेड़ उसके लगाया, यहां मेरा मन तुमने उपयोग क्यों किया? जो चीज तुम मुझको दे दिया है, मन पहले संकल्प करेगा, बुद्धि निश्चय करेगी, तभी ये शरीर चलेगा ना। कोई भी शरीर की इंद्रियां जो है वो मन के बगैर चल ही नहीं सकता, चलेगा? मन को ही बुद्धि कहते हैं, मन को ही चित्त कहते हैं, वो तो उसी के फॉर्म्स हैं। मन पांव को कहेगा कि दूसरे काठी पर रखो, तभी आगे रखेगा। उसने एक थप्पड़ लगा, तूने हमारे मन को तुमने हमारे इजाजत के बगैर क्यों उपयोग किया? अब एक सेकंड जो है ना वो विचार करने लगा कि तो अब तो मैं तन का भी प्रयोग नहीं कर सकता, अब तो मैं धन का भी प्रयोग नहीं। फिर एक थप्पड़ लगाया, कहता भाई तू हमारे मन को उपयोग क्यों कर रहा है, क्योंकि तन का भी विचार धन का भी विचार मन में ही होगा ना। हैं, वो एकदम शून्य हो गया, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, समझे कि नहीं। वो तो मन देने का मतलब तन भी चला गया धन भी चला, अब कुछ शेष मेरे को नहीं रहा। तो जहां पर कुछ नहीं रहता वहां तो वो रहता है, समझे कि नहीं। एक बार एक सेकंड के लिए ना राजा जनक शून्य हो गया। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक सब कुछ समाप्त होने के बाद जो शेष रहता वही तुम हो। अब तुम्हारे पास बचाने की कुछ रही नहीं, दैट विच रिमेन्स ओनली, वो जो अब शेष है, जो शून्य हो जाने के बाद जो शून्य को जानता है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वो तुम। और उसी वेले प्रकाश हो गया, मन शुद्ध था ना उसका सारा कुछ। तो देख लो जो है सो तीनों में पूछ के कल आ जाना, पत्नी से या पति से पूछ ले रहे। एनीवे, अच्छा आज एक ध्यान करना है कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो कौन देख रहा है। मन आंखें देखती है, मन देख आंखें देख रही है ना, है ओहो। तो सी अब मैं तो सीधा सा प्रश्न पूछता हूँ, आंखें देख रही है, सीधी सी बात है आंखें देख रही है। अब बताओ कि आंखों को कौन देख रहा है, मन देख रहा है। अब बोलो तो कोई बात भी तो वो सीधे अभी नर्सरी में तो एडमिशन नहीं होता, सीधे एमए क्लास में पहुंच जाते। वो असल क्या है ना, वो जो तोते की तरह जो रट बैठा ना भाई, ये सारा जगत को हम आंखों से देखते हैं, लेकिन इन आंखों को देखना हो तो हम मन से आंखों को देखते हैं। आंखों में दर्द है, आंखें अभी ठीक है, सब कुछ, सब अनुभव हम आंखों से मन से करते हैं, नहीं। और मन के अंदर जो सुख होता है दुख होता है, मन को किससे देखते हैं, मन को भी देखते हैं ना। जैसे अभी बैठे हैं शांत, मन चंचल है, मन में विचार उठ रहा है, मन को किससे देखते हैं। कोई है ना अंदर जो मन को भी जानता है, हाँ उसको आत्मा कह दो, साक्षी कह दो। साक्षी एक ऐसा शब्द है, साक्षी का मतलब होता है जिसके प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, साक्षी, गवाह। साक्षी का मतलब गवाह, हाँ हाँ यू कैन से ऑब्जर्वर, विटनेसिंग, समझने जो विटनेस कर रहा है। आपके प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, समझे ना। आंखें रूप को देखती है, बाहर के सारे रूपों को, और आंख को मन देखता है और मन को आप देखते हैं, आप नाम यहां साक्षी। और प्रसंग शुरू दिन से चला था, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, पोहप मध्य ज्यो बास बसत है मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर वसे निरंतर घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो एह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने। आपा का भाव ये है साक्षी को जाने बगैर मिटे न भ्रम की काय। आप ऑलवेज चलते फिरते सोते बैठते जागते, आप ये अनुभव करो कि मैं साक्षी हूं। ठीक है, साक्षी की साधना, आप क्या हैं? साक्षी हैं। जैसे आप रोटी खा रहे हैं तो आपने थाल में रोटी वगैरह सबको देखा, और आपने रोटी को उठाया, इसको भी देखा आपने, और फिर रोटी को मुंह में लिया और रोटी को खा रहे, उसके स्वाद को भी आप जान रहे हैं, उसको चिथी जाओ, स्वाद लिए जाओ, और अंदर ये देखो कि वो कौन है जो हर एक चीजों को जान, रोटी को भी देखा, दांत जीभ ये सब कुछ उसको पीस रहा है, उसको भी देख रहे हैं, जान रहे। देखना मीन्स जानना, समझ रहे ना? जहां भी मैं देखना कहूं इट मीन्स द नोइंग। हर एक परिवर्तनों को, फिर रोटी अंदर चला गया, उसको जानना है, और फिर शांत होकर के बैठो कि वो पेट भर गया, उसको हमने जाना है। ये पांच ज्ञान इंद्रियां जो है ना, जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और चमड़ी, जिससे ज्ञान होता है उसको हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, सेंसेस। ठीक है जी, पूरे जगत का ज्ञान इसी पांच ज्ञान इंद्रियों से होता है। मन आंख में बैठ के रूप को देखता है, मन ही नाक में बैठ के गंध लेता है, मन ही कान में बैठ के शब्द को सुनता है, मन ही पूरे शरीर चमड़े में बैठ के कठोर कोमल का अनुभव करता है। कैसे? आप देखना, कभी आंख खुली होती है और मन किसी के बारे में सोच रहा होता है डीपली, कोई सामने से क्रॉस कर जाए और कोई आके पूछे कि इधर से गौ गई थी देखा है तुमने, कहते हो मैं तो देखा नहीं, तभी तो आंख खुली है बैठे भी हो तो देखा क्यों नहीं, कहते मेरा ध्यान कहीं था। नहीं होता, सामने से निकल जाए और पता नहीं चलता, नहीं होता ऐसे। इसका मतलब कि ये आंखें जो है ना नहीं देखती, आंख में बैठ के मन ही देखता है। ठीक है, कभी कभी आपका मन किसी के साथ लगा रहता है, समझे कि नहीं, और कोई आपको बार बार कह रहा है रोटी खा लोगे, जैसे आपकी पत्नी पूछ रोटी खा लो रोटी खा लो, 10 बार बोलने के बाद कहते हैं तुसी हो किथे, हैं समझे कि नहीं, ये हैं तो यहीं पर, कान सुन भी रहा है लेकिन सुन के भी नहीं सुन, मन से कहीं शब्द होने पर भी हम सुन नहीं पाते, आंख का भी देख लिया कान का भी देख लिया, किसी ने बोला हो चारों तरफ लगता है रात रानी का खुशबू आ रहा है और आपका ध्यान कहीं है, ओहो कहते हाँ एक मिनट मैं गंध लेके देख बताता हूँ, हाँ वास्तविक में रात रानी खुशबू, तो पहले तो भी खुशबू था लेकिन ध्यान मेरा और जगह था। आप रोटी खा रहे हैं, रोटी भी खा लिया, दाल भी खा लिया, खीर भी खा लिया, अच्छा देखना कि सब्जी में नमक है ठीक, पत्नी ने पूछी, कोई नहीं मैं 2 मिनट ठहर जाऊँ मैं खा के देख के बताता हूँ, भाई आधी सब्जी खा लिया है तो देखे ही नहीं, जो इसका मतलब क्या है, जो आधी कोली जो सब्जी खा लिया ना उस वक्त मन कहीं और जगह था, नहीं होता ऐसा, और यही चीज होता है चमड़ी के साथ भी, कभी कभी चींटी जो है ना आप किसी काम में मशगूल होते हैं काफी, चींटी काट भी लेता है तो पता नहीं चलता, बाद में कहते थे सूज गया है, बाद में जब आप शरीर में आते हैं फिर देख और लगता कोई चींटी काट लिया। मन ही 5 ज्ञान इंद्रियों में बैठ के ज्ञान हासिल करता है, हमको बैक होना है, समझे, टू गो बैक, हमने सारे विषयों से हटा के पहले आंख में आना है, आंख में ध्यान करना है, यहां पर इस गोलक में 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स हम यहां पर हैं, यहां कंसंट्रेट करना है और फिर यहां से उठ कर हमने विषयों से उठ गया, ये विषय है ना जिसको हम देख रहे हैं, हम ये पूरे जगह से हट के हम एक जगह आ गए, आंख में यहां आ गए और 2 मिनट के बाद इसको भी छोड़ दिया, हम मन में आ गए, मन को देख लेना देखने लगे, मन शुभ विचार कर रहा है अशुभ विचार है, मन परेशान है मन प्रसन्न है, कुछ भी है मन, और कोई भी ख्याल उठ रहा हो, यू आर सेपरेट फ्रॉम थॉट्स, थॉट्स अलग है और आप अलग, जो भी थॉट्स होगा वो मन में होगा ना, अच्छे क्या ख्याल उठ रहे हैं जा रहे हैं, बुरे विचार उठ रहे हैं जा रहे हैं, आप टोटली उसको देखो डिटैच होकर के, अलग होकर के, आने दो जाने दो, ये देखने में बड़े आसान हैं काम, समझे ना, सेवा करना बहुत आसान है, समझे ना, 5 मिनट के बाद जी करता है, जब हम रहते थे अपने गुरु जी के पास है, तो दस मिनट बैठना ध्यान में, गुरु जी कोई सेवा कर लो मैं कहते सेवा तुम बैठ करके मन जो है ना लगता है ये कर लो वो कर लो उसमें, क्योंकि उसमें जो है ना सो लगा रहता, यहाँ पर बड़ी मन की मौत होती है। यहाँ ध्यान मीन्स मन की मौत, और जिसकी मौत हो फिर वो तो उसका वो तो सोचूगा ना कि भाई इसीलिए गुरुद्वारा है, मंदिर है, आश्रम है, हर एक की रुचि होती है ये कर ले वो कर ले वो कर ले, और वही लोग करवाते रहते हैं, फायदा भी उसको उसी में, ध्यान करवाएगा तो आश्रम वाले को की फायदा होगा बताओ, मंदिर वाले को की फायदा। इसलिए कहते हैं तू लगे रहा मेरा काम बनी जा रहा है, बस ठीक है। इन द लॉन्ग रन एक प्रकार का ये शोषण है, शोषण समझे ना, के पशु की तरह काम लोगों से लिए जाते हैं, जहां पहुंचना है ना तो उसको खुद पता है बेचारे को ना वो पहुंचाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में आया है मन मरे धात मर जाए, मन मरते ही वो प्रकट हो जाता है उसके बगैर नहीं। आप सिर्फ आधा घंटा शांत होके नो मेडिटेशन ओनली, शरीर को थोड़ा भी नहीं हिलाना, इतना भी नहीं, आप बैठे रहो, इसी में मन को मौत होने लगता है, थोड़ा भी नहीं हिलाना है शरीर को, जड़ की तरह ना, मिट्टी की तरह एक जगह छोड़ दो, ऐसे ऐसे रखे तो ऐसे रहना, ऐसे रखे तो ऐसे रखना, जैसे भी रखना, जो भी पांव चाहे हाथ जब भी आने लगे उसको एकदम रोक लो, समझे कि नहीं, आप देखना मन को कितनी बेचैनियां होती है। आदमी दो मिनट नहीं बैठ पाता, मैं देखता हूँ दो मिनट कुछ नहीं कुछ, चलो उंगलियां ही हिला लें, थोड़ा यही कर लें, थोड़ा वही कर लें, समझे कि नहीं। आप पांच मिनट शरीर को रोक लो ना, इसी में मन को बहुत भारी परेशानी होती है। ध्यान का मतलब है मन की मौत, और उसके मरे बगैर वो प्रकट नहीं होता, क्योंकि वही तो बाधा है। और मन हावी भी इसीलिए है, हमारे बच्चे कब बिगड़ते हैं, उसने इशारा किया ए लिया, जितनी हम बच्चों को सुविधा देते हैं ना उतने बच्चे हमारे सिर पर चढ़ते हैं, जितने भी अमीर घरों के लड़के हैं वो सारे बिगड़े होते, क्यों, उसने कार क्या कार मिल गया, उसने ये क्या वो मिल गया, उसने ये क्या मिल गया, दस चीजें दे करके एक बार मांग के आए ये तो अभी है नहीं, बस
है
मैं कह रहा हूं यही हाल है मन, मन को आपने बिगाड़ के रखा होगा जो कहा मानते रहे, समझे। ध्यान का मतलब है अपनी सुनना, मन की नहीं सुनना, ध्यान का ये मतलब है। लोग पता नहीं ध्यान को की समझ बैठे हैं, प्रयोग करते रहो अपने ऊपर ऑलवेज। ध्यान का मतलब होता है अंदर झांकना। भगवान महावीर ने घंटा दो घंटा तीन घंटा खड़े रहते थे, खड़े ध्यान करते थे, थोड़ा भी डोलना नहीं उन्होंने शरीर को, एकदम जड़ की तरह रखे रहना। और आप देखना आधा घंटा पंद्रह मिनट दर्द होगा, एक ऐसा समय आ जाएगा घंटा आधा घंटा के बाद शरीर खड़ा रहेगा और दर्द नहीं होगा। आप आश्चर्य होंगे, जहां पर कुछ नहीं होगा ना, वो आप बहुत नजदीक समझो पहुंच गए। लेकिन ये कुछ समय अभ्यास के बाद, फिर घंटा बैठे रहो, दो घंटा खड़े रहो, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि शरीर खड़ा है लकड़ी की तरह लेकिन दर्द नहीं हो रहा। कुछ दिन ऐसा होता रहेगा, फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा। इट मीन्स यू आर इन द समाधि। उस वक्त आप शरीर के पार हो गए। ध्यान का मतलब है टू गो बियॉन्ड माइंड। ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं है, समझे कि नहीं। यूं तो हमें बहुत कुछ अभी बतानी है, अभी एडमिशन तो चलो हो गया, समझे ना। एकाक महीने के बाद एकाक हफ्ते का फिर रखो, समझो ना आप लोग। और देखो कि हम किसी को $100 या $50 दे देते हैं मदद के लिए, तो वो तो जाएगा, कुछ खा लिया, कुछ सामान ले लिया, कुछ कपड़े ले लिया, महीना 15 दिन के बाद ख़त्म हो गया। नहीं, यही होगा। लेकिन उसके बजाय आप किसी को सत्य से जोड़ते हैं, सत्संग से जोड़ देते हैं, उसके बदले वो सारी जिंदगी आपको कुछ दे नहीं सकता। लाखों डॉलर दे करके आपका ऋण चुका नहीं सकता। हाँ, यदि वो आपके साथ प्रेम करता है, उसका प्रेम देना ही उसको चुकाना है। और यदि आपको किसी आपने सत्संग से जोड़ दिया, तो इतना बड़ा आपने पुण्य किया ना कि पृथ्वी दान दे करके भी जितना पुण्य नहीं होता उतना बड़ा पुण्य होता है। अब यहां पर किसी ने एक सुना होगा सुखमणि साहब, और फिर धीरे धीरे ऐसे जुड़ा, ये जो करीब करीब नए एक दो छोड़ करके ऐसे जुड़े हैं ना। तो जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या आगे और बताना चाहता हूँ, वो टोटली अंदर की चीज़ें, हमें बाहर की रुचि ही नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने सीधे कह दिए हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे और काहे रे बन खोजन जाए। तो हमें गुरुमुख बनना है, गुरु ने कहा हमने हुक्म मान लिया बस। अच्छा, ये पंक्ति को रट करके पाठ करते रहे सुबह से शाम तक, काहे रे वन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा लेपा तो है संग समाई, पोप मत जो बास बसत है मुकरमा है, जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंजन घटी खोजो भाई, जन नानक बिन आपा छीने मिटे न भ्रम की, बाहर भीतर एक हो जा। पाठ करते रहे सुबह शाम, इसका फल मिलेगा क्या? फल मिलना, गुरु ने कहा एक 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 गिलास पानी ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ, सुबह से शाम तक पाठ करता रहे, एक गिलास पानी ले आओ। पानी पुनी नहीं ला के दिया गुरु को, गुरु को पानी ला के नहीं दिया, एक गिलास पानी लेके आ जाओ, एक गिलास पानी लेके आ जाओ, एक गिलास पानी। यदि विचार करके देखो ना, सारे के सारे 99.9 एक गिलास पानी लेके आ जाओ, एक गिलास पानी लेके आओ, यही कर। गुरु ने जो कहा है उसको तुम करो, क्योंकि गुरु का वचन हुक्म होता है। उन्होंने हुक्म किया, हमने मान लिया। हुक्म मनिए होवे प्रवान, तखस्मे का महल पाइसी, बात खत्म है। उन्होंने हुक्म किया, हमने मान के कर लिया, काम खत्म हो गया। इतनी लंबी चौड़ी तो हमें आती भी नहीं है। समझ गए कि नहीं? गुरु की प्रसन्नता कब है? जब हम उनको हुक्म को मान के कर लिए। लेकिन लोग की पता नहीं क्या 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 कुछ करते हैं। सुनते सत्संग है, कल की बात था, मैं ऐसे कह रहा थी कि तुसी एक रसीद काट दो, मानता कौन है? मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज भाव से नहीं बोलता, मैं सिर्फ ये भी वाच करता हूँ कि अगला उस बात का वैल्यू कितना दिया है। आदमी अपने ही मनोरथ, तुमको गलत भी लगे तो भी ये कोशिश करो कि हम माने। आप ये सोचो, भाई लहना जी को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि दरख्त को हिलाओ इससे लड्डू पूड़ी गिरेगा। बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी और मूर्ख से मूर्ख भी कहेगा ये तो हो ही नहीं सकता। और ये भी मैं कहता हूँ, लड्डू पूड़ी गिरा था या नहीं गिरा था इसको तुसी छोड़ो, लेकिन उन्होंने सत वचन कह के चढ़े। और जो हुक्म की पालना है ना, ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ी साधना। उसमें वो हमें नुकसान होगा लाभ होगा फॉरगेट, अभी हम मानना सीखें। जिस किसी को हम अपने से श्रेष्ठ माने हैं ना, जिसको हम मार्गदर्शक समझे, कुछ अच्छा समझे, बड़ा समझे, हम उसको ओबे करने का प्रयास करें। हमने दुनिया का तो ओबे किया है, किसी संत महापुरुष के आगे अपने को सौंपा ही नहीं है, समझे ना? ये कोशिश करो कि हम ओबे करें, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हम ये वचन आपको सुना रहा हूँ ना, इसको भी ओबे करने का, उसको भी ओबे करने का, आप देखना ना कि उसका होगा फल क्या, कि हर एक बातों में कि उन्होंने ये बोला था अब ये करना है। ओबे करना नहीं होगा तो क्या होगा? तो बोलो तो थे लेकिन पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस संकल्प में बल नहीं होगा, फिर दो चार दिन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ओबे करने की भावना होगी ना, तो जो भी बताया आप घर में जाके चिंतन करना और वैसा ही करेंगे, और रिजल्ट देखना आपके जीवन में एकदम निखार आएगा, प्रकाश। एक समय की छोटी सी घटना बताता हूँ। हमारे गुरुजी थे, किसी प्रेमी ने कहा, अमृतसर जून का महीना दोपहर का टाइम, करीब 2-2.5 किलोमीटर घर था, दोपहर का प्रसादा था, एक करीब 80 की बात बता रहा हूँ, 80-81 की बात। मैं क्या, महाराज जी प्रसादा कह गए थे 12 बजे आने के लिए, मैंने जी उनसे पूछा नहीं कुछ, रिक्शा ले आए, उसने कार कहाँ था कि उनके पास, बहुत किसी किसी का रिक्शा ले आया। मैं कहा महाराज बैठो चलते हैं, रिक्शा से जाएगा हैं, मुझको गुस्सा करने लगे, रिक्शा से जाएगा जो पैदल नहीं जा सकता है, रिक्शा से जाएगा। मैंने क्यों बोलना था जो, मैं कहा महाराज साथ बच्चन, उन्होंने जो है आगे आगे तो मैं पीछे पीछे, जो 2-2.5 किलोमीटर धूप भी है, कहीं छांव कहीं कहीं दरख्त, आज इंडिया में तो दरख्त होते नहीं, तो लोग ज़्यादा किया नहीं, वो मैं पीछे पीछे जा रहा, पसीना सारा, गर्मी जून जुलाई का महीना, जो घर पहुंचा उनका पंखा था जो है, वो घर वाले कहने लगे महाराज जी जो है आप पैदल आए जो है, वो हमें आ जाते रिक्शा लेने, वो मुझको कहने लगे कि राम सिंह गुरु जी को तो पैदल ले आया जो है रिक्शा, कितने रिक्शे हैं, बैठ की बोलो जो मैं चुप रहा। वहाँ पर जब बैठे जो है, कहते हैं कि जो चार साधन संपन्न होता है वो ज्ञान का अधिकारी होता है। उसमें एक शब्द आता है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब जो वाहिगुरु के मार्ग में चला है, गर्मी हो, सर्दी हो, बोली हो, कुबोली हो, उसको सहना। कल वो कहते मुझको कि कल तू कथा करेगा, लोकानु सुनाएगा कि सर्दी गर्मी बोली कुबोली में सम रहना है। तो तूने तो सर्दी गर्मी सहा नहीं, तो लोकानु तू बताएगा जो है। मैं मन में क्या, मुझको इतना बताने के लिए इन्होंने मेरे कारण इतना जो है, कहते मुझे ये शौक नहीं था। मैं क्या तुमको थोड़ा सा ये बताऊं, मैं उनके चरणों में सिर रख, ये अनुकंपा होती, समझे। ये मिशनरी कॉलेजों में ये चीज़ें नहीं आती। ये मिशनरी कॉलेजों में ये पढ़ने की चीज़ें नहीं होती। सिर्फ इतनी सी बताने के लिए उन्होंने 2 किलोमीटर गर्मी में हमारे लिए, एक कितनी बड़ी कृपा उनकी, एक गुरु की कृपा कहते हैं, समझे। ये काम अलाइव गुरु ही कर सकता, समझे। आप ध्यान में बैठे हैं, कितने कॉन्शस हैं, कितने क्या हैं, कैसे भजन कर रहे हैं, अलाइव ही आपको देखता रहेगा और आपको चेंज करता रहेगा। ये तो और भी मैं बताता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब से सच्चे ढंग से अलाइव ही जोड़ सकता है, अलाइव ही जोड़ सकता है। और ज्ञान होने के बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा को वो जानेगा ना, वो कुछ और ही जानेगा। वो तो गुरु ग्रंथ साहिब को ऑलवेज छाती से लगा कर रखेगा कि इतनी ऊंची वाणी है, समझे। उसको उसको जो सत्कार ज्ञानी पुरुष देगा वो आम व्यक्ति क्या दे सकता है, दे नहीं सकता, समझे। ए लाइव गुरु की अनुकंपा मेहर ही मनुष्य के जीवन को बदलता है, समझे ना जी। ये तो आज कह तो रहा हूं ना कि एक आम आदमी समाज को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि मार्ग पता नहीं है और आगे लोगों को लीड कर रहा है, वो समाज को नुकसान पहुंचाता है। हमारे गुरुजी कहते थे एक बात, कीर्तन करने का सबको अधिकार है, जिसको राग विद्या पता है, धुर की वाणी है, उसका कीर्तन हर एक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन कथा और साधना कराना, वो कहते थे कि जब तक स्वयं आत्मा का बोध हो ना होवे, तब तक ना तो कथा करे और ना तब तक साधना कराए। कि यदि तुम कथा करते और साधना करवाते हो और बोध नहीं है, तो तुम अगले को कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। किसी के जीवन को ही गलत दिशा दे देना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, समझे ना। तो कहते हैं कि कोई व्यापार कर ले आदमी, आज तो कथा और ये सब चीज़ें एक व्यापार जैसा हो रहा है, एक हफ्ता यहाँ करेंगे कथा, एक हफ्ता यहाँ करेंगे, ज़्यादा बन जाएगा। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी कहे थे एक बात, जब तक खालसा रहे न्यारा, है जी, जब तक खालसा रहे न्यारा, तब मैं तेज दियो मैं सारा, ऐसे है पंक्ति, तब हमारी शक्ति उसके साथ रहेगा। जब तक खालसा रहे न्यारा, तब मैं तेज दियो मैं सारा। जब ये गही विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी, जब ये ब्राह्मणवाद में आ जाएगा, ब्राह्मणवाद है क्या, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, हमको कोई नहीं तो 100 रुपया दे दे तेरे लिए पाठ कर दूंगा, कोई नहीं तुम जो है सो जाओ यहाँ से इंडिया भेज देते हैं, तुम्हारा खंड पाठ कर दो। कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, मतलब समाज कितना भटका हुआ है, मैं 1,000 रुपया डॉलर भेज दूंगा, हाँ जी तेरे नाम से जो है सो भंडारा भी कर दिया है, पाठ भी कर दिया, जिस चीज़ से गुरु नानक देव जी ने रोके थे, भाई श्राद्ध करा रहे तुम्हारे पितरों को नहीं पहुँच रहा है, तो ये पितरों वाला काम हो गया ना, उठे पाठ कर देगा, उठे जो है सो नन वो पता न अगले ने पाठ किया या क्या किया नहीं किया जो है। जब यह गही विपरण की रीत मैं ना करूँ इनको, गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, जब ये ब्राह्मणवाद में पड़ जाएगा मैं इन, मेरी तेज मेरी शक्ति उसके साथ नहीं। आज निरापाखंड का ही जो है ना, जो 1,000 साल से ब्राह्मण करते रहे ना, वही इधर घुस गया है, ये ब्राह्मणवाद घुस जाता है हर एक जगह, ये करो वो करो वो करो जो है सो सारा कुछ जो है। अदरवाइज जो है ना वाहेगुरु का मार्ग बहुत सहज है, बहुत सहज। हमारे संपर्क में जो भी लोग आवे आता है तो मैं उसको कहता हूँ एकदम सहज, रोना आवे रो दो, भूख लगाए रोटी खा लो, जो भी अंदर है उसको सीधा बोल दो, बात खत्म। अपने जीवन को एकदम सरल कर दो, समझे, जो जो चलाकी दिखाए ना मेरे आगे मैं उसको एकदम लाइक नहीं कर। गरीब होना बुरा नहीं है, समझे ना, मैं तो उसको ज़्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन चलाकी दिखाए उसको लाइक नहीं करता, चलाक को पसंद नहीं करता, क्योंकि चलाक होने पर वो मेरा नुकसान नहीं करता, वो अपना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा परिश्रम है वो व्यर्थ जा रहा है। इस मार्ग में अति सरल होना, अति सरल होना, समझे कि नहीं। 4 दिन इस पृथ्वी पर रहना है, लेकिन एकदम एक फूल की तरह कोमल, हर एक को खुशबू देना है, समझे ना, हर एक का हमारे से भला, हमारी वाणी ऐसी ना हो कि किसी के मन को दुख दे, समझे, हमारे द्वारा किसी का नुकसान ना हो, मैं मर जाऊँ वो चंगा है, ये सोच ले मेरी मौत हो जाए वो चंगा है, लेकिन हमारे द्वारा किसी को नुकसान ना हो जाए। ऑलवेज कॉन्शस, ऑलवेज। और जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा हो उसको हटा ही देना चंगा है, समझे ना। साधना के लिए कुछ भी करना पड़े, साधना के लिए माता पिता भाई बहन दुनिया में सबको छोड़ना पड़े तो छोड़े, लेकिन साधना के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, ये छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन साधना में अड़चन आए तो कुछ भी हमें स्वीकार नहीं है। और एकदम संकल्प, सत्य संकल्प, इतना संकल्प हो। कल जो कथा शाम को 7:30 से 8:30 करते ना भवन अखरी में, तन मन धन तिसे सौंपिए जो प्रभु मिलावे मोहे, मैं देखो क्या, न तो आदमी तन सौंप सकता है, न मन सौंप सकता है, न धन सौंप सकता है, चाहता सब कुछ। गुरु महाराज ने शर्त लिखे हैं, तन मन धन तिसे सौंपिए जो प्रभु मिलावे मोहे, वो होता क्या है, क्यों ऐसा बोले हैं, जो प्रभु से मिलाएगा ना उसको तन नहीं चाहिए और ना उसको धन चाहिए और ना उसको मन चाहिए। जो प्रभु से मिलाने वाला होगा उसकी चाह तुमसे क्या होगी, जिसने जिसने उसको पा लिया है, जिसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, जिसने उसको पा लिया है वो तुमसे कुछ चाहता है ना, तो समझो उसने पाया नहीं, कुछ भी चाहता है, मान भी चाहता है। मैं कहता हूं पैसा कौड़ी सांसारिक चीजें तो छोड़ो, मान भी चाहता है, यदि कुछ भी चाह है तुमसे एक राजा को कंगाल से क्या चाह होगा, समझे ना? तुमसे कुछ चाह है तो समझो उसने सत्य को नहीं पाया है। वो कुछ भी करवाता है ना तो उसके पीछे कोई महान उद्देश्य होता है। तन मांगता है इसलिए कि सेवा होगा तो तन शुद्ध हो जाएगा। धन भी इसलिए कहता है ताकि उस धन का कोई सदुपयोग होगा तो उससे हजारों को लाभ होगा। और मन भी इसलिए मांगता है कि मन के देते ही जो चैतन्य है वो प्रकट होता है। वरना जिसने सत्य को पाया है उसको ना तो तुम्हारा तन चाहिए और ना मन चाहिए ना धन चाहिए। यदि तुमसे कुछ चाहिए ना उसको तो भिखारी है, समझे कि नहीं? वो भिखारी हो सकता है, संत नहीं हो सकता जिसको तुमसे कुछ चाहिए, समझे ना? इसलिए एक तो सत्य संकल्प हो, उस संकल्प को बढ़ाई जाना है, बढ़ाई जाना है, बढ़ाई जाना है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने पहले 13-14 साल बहुत तपस्या किए, बहुत संतों के पास गए, जैसा जिसने कहा वैसा किया उन्होंने। एक संत ने कहा कि 3 महीने तक एक चावल रोज खाना है और भजन करना, उन्होंने ये भी किया और शरीर में हड्डी हड्डी रह गया, मांस तो खत्म ही हो गया, चलने की शक्ति नहीं रह गई। उन्होंने जिसने भी बताया उन्होंने किया। एक दिन एकदम थक करके पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गए और जो वो ध्यान बताया ना आपको, आते जाते श्वासों को देखना, वो करते रहे और ये संकल्प कर लिए कि प्रकाश होगा तो यहाँ होगा, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, भावें शरीर ही चला जाए। उन्होंने शाम को संकल्प किया और उसी रात इनलाइटेंड हुए। संकल्प में इतनी शक्ति है, सत्य संकल्प में इतनी शक्ति है कि आप कबीर हो सकते हैं, आप रविदास हो सकते हैं, आप जो है ना वो कुछ हो सकते हैं, आप बुद्ध हो सकते हैं, आप महावीर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्या कमी है बताओ? वो कपड़ा बेचते बेचते सत्य को पा लिया, रंगाई करते करते नामदेव जी ने पा लिया, हाँ जी, धन्ना जट खेती करते करते पा लिया, सही नाई लोगों को केस बनाते बनाते जो है, नाई का काम क्या, केस ही काटना चाहे और मलहम पट्टी वो पहले करते थे, वो पा लिया है, हम क्यों नहीं पा सकते? अपने से पूछो क्यों नहीं पा सकते, क्या कमी जो नहीं पा सकते? पंच भौतिक शरीर उसका भी था, मेरा भी था, लेकिन जो 50 साल 40 साल बीत गया, अब हम एक एक दिन एक एक मिनट सत्य के लिए जीना है। बहुत धन ना हो नो प्रॉब्लम, हम बहुत बच्चों की खुशियां ना दे सके नो प्रॉब्लम, लेकिन चलना सत्य के मार्ग पर। अड़चन क्या होता है सत्य के मार्ग में चलने पर? अड़चन क्या है? अड़चन सिर्फ ये होती है, इसको कान खोल के सुनना, कि करोड़ों लोग इस तरफ जा रहे हैं, करोड़ों, और आपको अकेला इधर जाना पड़ेगा। करोड़ों के साथ संघर्ष, समझे ना? एक करोड़ों दुश्मन हो जाना आपको, ना चाहता हुआ भी। हम ईसा मसीह को लोग की क्यों कील ठोका? उन्होंने कोई किसी को तकलीफ दिया था? यहां तक कि जब वो कील ठोक रहे थे ना उसके शरीर में, तो अरदास करते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, इन लोगों को माफ कर देना, जो किल ठोक रहे हैं इनको माफ कर देना, इनको ये पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, प्लीज फॉरगिव देम। देखो उनके अंदर दया देखो और वो देखो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किसी को मन से भी बुरा सोचे थे? गुरु तेग बहादुर जी ने क्या बुरा किए थे लोगों से? लेकिन क्यों है समस्त अवरेज ने, मंसूर ने, मीरा ने क्या किया था? होता क्या है कि जब सत्य के मार्ग में चलते हैं तो हम अकेले होते हैं या एक दो और होते हैं, करोड़ों और तरफ जा रहा है, वो ना चाहता हुआ भी दुश्मन हो जाता है। हर एक जगह होता है। क्या सोच रहे हो? हमें कदम कदम पर मुश्किल होता है, एक एक कदम पर मुश्किल होता है। आप हैरान होंगे, जैसे ये गुरुद्वारा है जी, हमने कथा करना, कमरे चला जाना या सैर करने जाना, ना तो एक रुपया लेना, ना ऊपर चढ़ावा चढ़ना है, ना जाने वाले कुछ देना है, फिर भी मुश्किल होता है। फिर भी ना हमने किसी से दो मिनट बोलना है, फिर भी लोगों को दुख होता है, ऐसे भी होता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना ही है कि उसका मार्ग अलग है। हाँ, उसके पास आधा घंटा घंटा जा करके उसकी बात सुनो संसार की, फिर लगेंगे ये हमारे जैसे ठीक है। उसके पास जा करके वो कुछ निंदा किसी का कुछ बात सुनाना चाहते हैं, सुन लो, बहुत अच्छे। लेकिन मेरा तो ये होता है कि कमरे में के भी सत्संग सुनना है तो अंदर पांव रखना है, नहीं तो बाहर ही रहना है। मैंने ऐसे शक्ति रखा हो कमरे में, अपना ऐसा नियम रखा, कोई सत्संग की पूछना है बात या करना है तो अंदर आना, नहीं तो नहीं आना। तो भावे जो है सो शरीर की मौत हो जावे, सारी दुनिया दुश्मन हो जाए। अच्छा, इस देश में तो फिर भी सत्य के मार्ग में चलना आसान है। क्यों? कि यहाँ पर आपने काम किया, आपको तनख्वाह मिला और आप जी रहे अपने ढंग से। इंडिया में सत्य के मार्ग में चलना ज़्यादा कठिन है। क्यों? वहाँ पर आपके काम को बिगाड़ देगा जल्दी, क्योंकि उधर राजनीति ज़्यादा चलती। ये बड़ा ज्ञानी बना है, बड़ा सत्य के मार्ग, इसकी नौकरी छुड़वा दो, इसका वो कर दो, समझ गए ना? तो यहाँ सत्य के मार्ग पर चलना आसान है, वहाँ ज़्यादा दुश्मन बन जाएंगे, बसरते यहाँ। तो इस हिसाब से आप लोगों का भाग्य अच्छा है, आप अपने ढंग से जी रहे हैं, बहुत कम लोग आपको देखेगा। वहाँ तो सारे एक दूसरे को वाच ही करते रहते हैं, यहाँ पर भी तो आदत तो वही है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी करते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ ना, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जितने ज़्यादा अंग्रेज लोग रहते हैं उतने लोग उस एरिया में रहते, ताकि तो ध्यान करते। मैं तो कुछ और ही यही तो कहते हैं ना।